मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 30 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। डेफिनेटली इस टॉपिक का संबंध आपके मेंस के जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर से है और यह टॉपिक है एटीट्यूड पर अभिवृत्ति पर, जिसे हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि अभिवृत्ति कहने से आप नहीं समझेंगे, लेकिन एटीट्यूड कहने से आप जरूर समझ जाएंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बात बात में आप सब एटीट्यूड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिए कि आप जिस तरीके से जिन अर्थों में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, उन अर्थों से थोड़ा यह भिन्न अर्थ भी रखता है। बल्कि थोड़ा नहीं बल्कि कह लीजिए कि काफी कुछ भिन्न अर्थ रखता है। आप हम किस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप सोच के देखिए। अरे यार ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ भैया, चलो अब हो गया, बहुत हो गया। अरे वो तो बड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसका एटीट्यूड कुछ समझ में ही नहीं आता। इस तरह की बातें हम करते हैं। अरे तुम्हारा एटीट्यूड मैं ढीला कर दूंगा, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जो एटीट्यूड है, देखिए इन सब ये भी जितने भी मैंने प्रयोग के तरीके बताए हैं जिन अर्थों में हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें लगता है कि जैसे ये कोई बुरी चीज है ना, निगेटिविटी की तरफ दिखाई देता है, वो बड़ा एटीट्यूड में रहता है। मतलब यहां पर अगर हिंदी का हम शब्द लाना चाहें यार, वो बड़े अकड़बाजी में रहता है, वो बड़ा अकड़ा हुआ सा रहता है, बड़ा घमंडी टाइप का है। हम एटीट्यूड को इस रूप में लेते हैं, बड़ा एटीट्यूड वाला है ना, बड़े नखरे वाला है। यहां हिंदी का शब्द आप ला सकते हैं, नखरे वाला। लेकिन जब आप इसी शब्द को नीति शास्त्र की किताब में पढ़ेंगे या मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तो इनमें से कोई भी हिंदी का शब्द यहां फिट नहीं बैठता है। सामान्यतया इसके लिए जो यूपीएससी ने अनुवाद किया है, यहां तक कि किताबों में भी जो शब्द आपको मिलेगा एटीट्यूड के लिए, वह है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति राइट। देखिए अभी क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग आप जानते हैं, हिंदी में दो बहुत महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। एक तो यह कि किसी शब्द के शुरू में छोटा सा शब्द लगा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं उपसर्ग लगाना, और दूसरा होता है प्रत्यय, शब्द के आखिरी में कुछ जोड़ देना। जैसे इसमें क्या शब्द है, वृत्ति, तो उसके पहले क्या शब्द लगा दिया गया, अभी, अभिवृत्ति। तो अभी का मतलब होता है विशेष, विशिष्ट, और भी इसके अर्थ होते हैं लेकिन केवल मैं अपने अर्थ को यहीं तक सीमित रखूंगा। तो अभी का मतलब हो गया विशेष, वृत्ति का मतलब हो गया उसकी आदत, कह लीजिए कि अभिवृत्ति, उसकी विशेष वृत्ति। यानी कि जो सामान्य तरीके की आदतें हैं वो इसमें नहीं आएंगी, कि उसे अचार पसंद है और दाल रोटी नहीं पसंद करता वो, ये पसंद नहीं आएंगी, ये तो सामान्य पसंद है। विशेष पसंद, विशेष वृत्ति, तो ये हो गई अभिवृत्ति। और इंग्लिश में तो एक ही शब्द है एटीट्यूड। वैसे अगर आप हिंदी में कुछ दूसरे शब्द इसके बारे में जानना चाहें, उपयोग करना चाहें, तो आप कह सकते हैं रवैया, उसका रवैया कैसा रहता है, या नजरिया शब्द भी आप कह सकते हैं, हिंदी का एक अच्छा शब्द होगा दृष्टिकोण। और अभिवृत्ति के अनुकूल ही मुझे लगता है कि एक और शब्द हो सकता है मनोवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति कैसी है। तो मुझे लग रहा है कि रवैया, नजरिया, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, ये जो पर्यायवाची टाइप के शब्द हैं, शायद इनका उपयोग करने से अभिवृत्ति का अर्थ समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो गई होगी। इसे अगर आप पारिभाषिक रूप में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या कोई घटना घटेगी, कोई चीज होगी, कोई स्थान होगा, कोई व्यक्ति होगा, ये सब चीजें होती हैं हमारे चारों तरफ, उनके प्रति हमारा दो ही रुख हो सकता है, या तो हम उन्हें पसंद करें या हम उन्हें नापसंद करें। पसंद करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक साहित्यिक शब्दावली में सकारात्मकता, और अगर नापसंद करते हैं तो उसे हम कहते हैं नकारात्मकता। यानी कि किसी भी वस्तु, स्थान, घटना, व्यक्ति, जो जो भी आप नाम ले लें इसमें, समूह, विचार, फिलॉसफी, उसके प्रति, उनके प्रति या तो हमारी पसंद है या नापसंद है, या तो हमारी सकारात्मक वृत्ति है या हमारी नकारात्मक वृत्ति है, या कह लीजिए सकारात्मक भाव है या नकारात्मक भाव है, और इस सकारात्मक और नकारात्मक भाव को ही हम अभिवृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। तो आप देखें कि यहां जो एटीट्यूड है सीधे सीधे एक मनोवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ गया है, क्योंकि यह भाव है, ये बेसिकली पसंद ना पसंद करना एक भावना है, विचार नहीं है सामान्य रूप में। देखिए ये बात अलग है कि उसके प्रति हमारे कोई न कोई विचार बने होंगे तब हमारी भावना पैदा हुई होगी, इसके बारे में हम अभी आगे चल करके देखेंगे, राइट। तो मेरी समझ से यहां क्लियर हो गया होगा कि अभिवृत्ति यानी कि विशेष किस्म की वृत्ति, जो सामान्य चीजों के लिए नहीं होती है लेकिन विशेष चीजों के लिए होती है, विशेष किस्म का भाव होता है, और ये दो तरह का, या तो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप फॉरेन घूमने गए हैं, आप समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वहां बहुत थोड़े से कपड़े पहने हुए स्त्री और पुरुष घूम रहे हैं और लेटे हुए हैं, तो अब जो वेस्ट का व्यक्ति होगा, जो पश्चिमी देश का होगा, उसके लिए बहुत ही सामान्य सी चीज है, उसके प्रति सकारात्मक रुख रखेगा क्योंकि वहां उनकी वो संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई भारत का व्यक्ति होगा तो उसे देख करके बड़ा अटपटा सा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, तो उसके प्रति नकारात्मक रुख रखेगा, वो कहेगा कि नहीं ये तो सब अश्लीलता है। तो ये मनोवृत्ति है, राइट। अब आइए इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि इसके कंटेंट क्या है, ये मतलब ये बनता कैसे है, ये हमारी जो मनोवृत्ति है इसमें कि कौन कौन से तत्व होते हैं, इनकी अंतर्वस्तु क्या है। कंटेंट के लिए अच्छा शब्द होगा अंतर्वस्तु, ये भी सिलेबस में सीधे सीधे आपका मेंशन किया हुआ, इसलिए मैं इस शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं। शुरू में जब इसके बारे में विचार होने लगा 1950 के आसपास से ही, सच पूछे तो मनुष्य के मनोविज्ञान के बारे में ज्यादा बातें होने लगी, हालांकि इससे पहले फ्रायड वगैरह कर चुके थे शुरुआत इसकी, लेकिन यहां से फिर और दूसरे क्षेत्रों में भी काफी खोज होने लगी। तो ये माना जाता था कि बेसिकली जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो एक प्रकार के साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कह लीजिए, या कह लीजिए कि एक भावनात्मक स्थिति है, ज्यादा अच्छा होगा ये शब्द कि एक भावनात्मक स्थिति है, या तो वह सकारात्मक है नकारात्मक है, यानी कि पूरी तरह से ये इमोशनल है, अपने आप में इंडिपेंडेंट इमोशन है ये। लेकिन आगे जब और रिसर्चेज होने लगी तो इसमें कुछ और एड ऑन किया गया, कहा गया कि नहीं नहीं ये केवल भावना नहीं है बल्कि कहीं न कहीं इसमें ज्ञान का भी हाथ होता है। ज्ञान का हाथ होता है मतलब ये कॉग्निटिव, आप इसको कह लीजिए कि अगर आप इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉग्निटिव भी है, जिसे साहित्यिक शब्दावली में कहते हैं संज्ञानात्मक। ये सब शब्द आपको किताबों में पढ़ने को मिलेंगे, संज्ञानात्मक, यानी कि उसके बारे में हमारे कुछ विचार होते हैं और उन विचारों के अनुकूल फिर हमारी भावना पैदा होती है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, गरीब सा व्यक्ति है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है, तो आपको उसके प्रति दया आएगी, तो उसके प्रति सकारात्मक रुख होगा, तो आप सोचेंगे यार इसको 50-100 रुपए दे दो या इसको खाना खिला दो, ठीक है। तो ये पूरी तरह से भावनात्मक स्थिति हुई। लेकिन पता लगा है आपको कि किसी ने आकर के बताया कि भैया ये बहुत दारूबाज है, आप इसको पैसे दे देंगे, ये दारू के सिवाय कुछ पीता ही नहीं है और बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत ही गलत आदमी है, ये वेश बना करके ऐसा घूमता रहता है, ऐसा ये है नहीं, तो आपको इसके बारे में ज्ञान मिल गया, संज्ञानात्मक है ना, कॉग्निटिव हो गया, ज्ञान मिल गया कि नहीं नहीं ये व्यक्ति ऐसा है। तो अब आप बताइए कि पहले जो आपके मन में उसके प्रति सकारात्मक भाव था कि यार इसकी मदद करनी चाहिए, अब क्या हो गया, नकारात्मक भाव हो गया ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो किसी के प्रति हमारी विचारधारा बनती है वो केवल, या भाव पैदा होता है, जो अभिवृत्ति कह लीजिए, मैं बोलने की जल्दबाजी में कभी कभी विचारधारा शब्द का इस्तेमाल कर लूंगा, तो उसको आप अभिवृत्ति में कन्वर्ट कर लीजिएगा प्लीज। तो जो भाव हमारे पैदा होते हैं जिसे हम अभिवृत्ति कह रहे हैं, वो शुद्धतः भाव ही नहीं होते बल्कि उसके बारे में हमारी जानकारियां भी उसमें शामिल होती हैं। एक पीपल का पेड़ है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसकी पूजा करते हैं, पता लगा कि उसके ऊपर भूत रहता है, आपको ज्ञान हो गया, तो देखिए वो पीपल का पेड़ आपको डराने लगेगा बेवजह। सच झूठ का सवाल नहीं है, सवाल यह कि आपका ज्ञान उसमें शामिल हो गया। तो ये सेकेंड स्टेज आया, यानी कि दो चीजें हो गई, एक हो गई भावना, दूसरी चीज हो गई विचार यानी कि ज्ञान। तीसरी चीज फिर आगे जाकर के जब रिसर्च हुए तो बोले कि नहीं, इसमें एक और चीज शामिल होती है जिसे आप कहेंगे व्यवहार, बिहेवियर। अब आपको लगेगा कि बिहेवियर कैसे शामिल होता है, और आप समझ गए होंगे क्योंकि जब हम किसी के प्रति कोई भाव पैदा करते हैं या भाव हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो हमारे अंदर एक्शन भी लगभग उसी तरीके से होने लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि पीपल का पेड़, पहले आप पूजा करते थे, दोपहर में जाकर के उस गर्मी के दिनों में उसके नीचे बैठते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था, पता लगा कि भैया इसमें तो भूत रहता है, तो अब आप उससे डरने लगे। तो जैसे ही पता लगा आपको भूत रहता है और आप डरने लगे तो अब आपका एक्शन क्या होगा? शाम होने के बाद आप उस पेड़ के नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि वहां भूत है, तो आपका एक्शन बदल गया ना, पहले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जो आपकी अभिवृत्ति बनी अब उस पीपल के पेड़ के प्रति, अब आप देखिए कि तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं। भावना कहां से आई थी? अपने शास्त्रों से, कि जो पीपल का पेड़ है वो बहुत बहुत प्रिय पेड़ है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो आप पूजा करने लगे। फिर ज्ञान मिला कि नहीं भैया, इस पीपल में तो भूत रहता है, वो गर्दन मरोड़ देता है, तो अब आप डरने लगे। उस पेड़ के प्रति जो प्रेम का श्रद्धा का भाव था वो भय में बदल गया, और इसके बाद जब वो भय में बदल गया तो आपका एक्शन उसी तरह से हो रहा है। पहले एक्शन उस तरह से होता था, पहले आप जल चढ़ाते थे, अब पता लगा कि आप भाग रहे हैं। तो एक्शन, ये तीनों चीजें अभिवृत्ति, इन तीनों से मिलकर यूं कह लीजिए कि अभिवृत्ति बनती है, राइट? अब आइए हम इसको थोड़ा सा जिंदगी के संदर्भ में देखते हैं। अब देखिए, ये मतलब मान करके चलिए कि ये तीनों एक साथ एक जैसा काम नहीं करते हैं, याद रखिए, एक ही तरह से काम नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, भले ही आज का यह लेक्चर इसी में ही क्यों ना समाप्त हो जाए, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको आपको मालूम है कि ये जो मेरा बॉस है ये बहुत बहुत बुरा बॉस है, बहुत बदमाश है, ठीक है। तो अब जो बुरा होगा, जो बदमाश होगा, बस स्वाभाविक है कि आपको मालूम है कि मेरे प्रति दुश्मनी का भाव भी रखता है, तो आप उससे चिढ़ेंगे। और किसी से भी जब आप चिढ़ेंगे तो क्या करेंगे? उसे भागने की कोशिश करेंगे, उसके सामने नहीं आएंगे, आएंगे भी तो उसे ठीक से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि भैया ये तो फालतू बेकार का आदमी है और मेरा दुश्मन है, आप दुश्मन से कैसे बात करते हैं, नहीं। लेकिन मजेदार बात है कि जिसे आप दुश्मन मान रहे हैं वो आपका बॉस है। अब आपके मन में उसके प्रति भाव तो नकारात्मक है, भाव नकारात्मक है, विचारों से बन गया है कि नहीं ये तुमसे बहुत चिढ़ता है, लेकिन अगर बॉस बुलाएगा तो जाएंगे, डांटेगा तो चुपचाप सुनेंगे, आप उसको जवाब नहीं देंगे उलट करके, और जो जवाब देते हैं उन्हें फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो अब आप देखिए कि अभिवृत्ति तो उसके प्रति नकारात्मक है, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो सकारात्मक बना हुआ है, सकारात्मक बना हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो तीनों चीजें हैं ये बिल्कुल एक ही सिक्वेंस में काम करती हैं, ऐसा नहीं होता है, ये अलग अलग तरीके से काम करती रहती हैं। कभी पता लगा कि भावना प्रबल है तो वो काम करा रही है, कभी विचार प्रबल है तो वो काम करा रही है, कभी एक्शन काम करा रहे हैं, हम नहीं जानते कि कौन सा कब क्या काम हम कर रहे हैं, हालांकि सोच समझ करके ही करते हैं, लेकिन इन तीनों में कोई संगति नहीं है कि ये तीनों बिल्कुल एक ही लाइन में काम करें। और ये माना जाता है कि अगर ये तीनों एक ही लाइन में काम करने लग जाए फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो वो चीज जो है वो एक लाजवाब चीज होती है। और इसे ही हम कहते हैं आंतरिक सामंजस्य, आंतरिक संगति। और ये आंतरिक संगति आदमी को बहुत ही परफेक्ट बना देती है, लेकिन मित्रों इसका होना उतना आसान नहीं है, जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण के जरिए बताया, और आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी अपनी अभिवृत्तियों का, अपने अपने एक्शन का इसके आधार पर थोड़ा सा विश्लेषण करके देखें, इससे क्या होगा कि आपको इस विषय को समझने में बहुत आसानी होगी और आपको इस विषय में बहुत मजा भी आएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा आप इन चीजों को अपने ऊपर ढाल लें। चलिए आपको मैं एक विसंगति का एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण बताता हूं, है ना, आप लोगों को शायद इस उदाहरण में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मजा क्या, ये ज्यादा आपको याद भी रहेगा। जैसे प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, आप देखिए कि अब प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव रखे हुए हैं, तभी तो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, दोनों ने वायदा किया है कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, ठीक है। वुड बी हस्बैंड वाइफ है, प्रेमी प्रेमिका वुड बी हस्बैंड वाइफ है, भविष्य में होने वाले पति पत्नी है। चलिए अब आप देखिए कि अगर प्रेमिका से, उसकी प्रेमिका से प्रेमी के बारे में कुछ गलत बात कही जाए कि देखो बहुत बदमाश है, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, अगर वो सच्ची प्रेमिका होगी तो विश्वास नहीं करेगी और उससे चिढ़ेगी नहीं। और ठीक है, प्रेमी के साथ होगा, आप प्रेमी से जाकर के उसकी प्रेमिका के बारे में बोलिए, नकारात्मक कोई चीज बताई तो उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर शक्की दिमाग का होगा तो बात अलग है, लेकिन सच्चा प्रेम होगा तो वो उस पर शक नहीं करेगा, आपकी जो नकारात्मक भावना है उसको किनारे कर देगा, यानी कि जो नकारात्मक ज्ञान है उसके आधार पर वह अपनी अभिवृत्ति को परिवर्तित नहीं होने देगा। देख रहे हैं ना, तो यहां भी संगति नहीं है। तो मित्रों, ये जीवन को समझने का एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है अभिवृत्ति, और प्लीज इसको आप लोग समझने की कोशिश करें, आप लोगों को ये खूब मजेदार लगेगा। तो दोस्तों, अब चूंकि समय तो देखिए मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इशारा कर रहा है कि बस भैया हो गया, आपका समय खत्म हो गया, तो अब घंटी बजने ही वाली है। तो मित्रों, इससे पहले कि घंटी बजे, मैं अब आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप एक दो दिन में ही इस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं कोई चीज कठिन लगती है तो आप मुझे ईमेल भेजिए, समय आने पर मैं बिल्कुल आपके ईमेल के जवाब दूंगा, और जो टॉपिक है, जो विषय है, उसे और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।